ओम शांति। आज की कथा का शीर्षक है साहसी पद्मा। एक साधारण क्षत्रिय के दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़का बड़ा था और उसका नाम जोरावर था। बहन का नाम था पद्मा। दोनों बच्चों की छोटी उम्र में ही माता पिता स्वर्ग सिधार गए, अर्थात परलोकवास हो गया। बच्चों के किसी सगे संबंध ने उनकी कोई सहायता नहीं की। गांव के एक महाजन ने उनकी जमीन और घर द्वार के एवज कुछ कर्ज दे दिया। जोरावर कुछ करता न था, अतः कर्ज बढ़ता चला गया। नौबत यहां तक आ गई कि महाजन ने जोरावर को गिरफ्तार करवा दिया। पद्मा अकेली रह गई। अकेली युवती कहां से खाए और कैसे अपनी आबरू सुरक्षित रखे, इस पर वह विचार करने लगी। सोचते सोचते उसने एक निश्चय किया। उसके अनुसार उसने अपने भाई के मर्दाने वस्त्र पहने और लश्कर के महाराज सिंधिया के राजदरबार में पहुंच गई। जवानी की चढ़ती उम्र और कमान के सामने तनी भी बहुओं वाले युवक को देखकर महाराजा आश्चर्यचकित रह गए। तब तक युवक उन्हें प्रणाम कर चुका था। महाराजा ने पूछा, युवक तुम कौन हो, कहां से आए हो, मुझसे क्या काम है, यह भी बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। युवक बोला, महाराजन मैं आपके राज्य के एक गांव का रहने वाला एक क्षत्रिय युवक हूं, वहीं से आया हूं और अपने लायक कोई सेवा चाहता हूं। नाम मेरा पद्म सिंह है। महाराज कुछ सोचते रहे। उन्होंने देखा नवयुवक सेना में भर्ती किया जा सकता है, अतः उन्होंने प्रश्न किया, घुड़सवारी जानते हो? बचपन में पिता के सामने ही सीखी थी, बस उतनी ही जानता हूं, पद्म सिंह ने उत्तर दिया। युवक को सेना में भर्ती कर लिया गया। इसमें युवक ने प्रार्थना युक्त एक शर्त कर दी थी कि वो सामूहिक निवास में नहीं रहेगा, अलग अकेला ही रहेगा। महाराज ने शर्त स्वीकार कर ली थी। जोरावर उन्हीं के यहाँ कारागार में बंद था। पद्म सिंह ने सेना में रण कौशल के कई गुर सीख लिए और सेना की एक टुकड़ी का उसे कमांडर बना दिया गया। वह अपने वेतन में से कम खर्च करता था और एक भारी रकम बचा लेता था। उसे यही धुन लग रही थी कि महाजन का कर्ज शीघ्र से शीघ्र चुकाकर भाई को कारागार से मुक्त करा ले। उसकी उभरी हुई छाती और यौवन से भरपूर मुखाकृति देखकर बहुतों से सैनिकों को शंका होती थी कि वह युवक नहीं कोई युवती है। इसलिए उसने अपने एकांकी रहने के लिए अलग आवास मांगा है। पर उसका पुरुषोचित पराक्रम और महाराजा का भय किसी के होंठ नहीं खुलने दे रहे थे। रात में घर पर अकेली रहती पद्मा को भाई की याद आ जाती और वह फूट फूट करके रोने लगती। यह आवाज भी यथावसर कई सैनिकों ने सुन ही ली, फिर लुक छिप करके उसकी आवाज में ताकने झांकने भी लगे। तभी एक दिन स्नान करते हुए पद्मा को उन्होंने देख लिया। फिर यह बात लश्कर नरेश सिंधिया को बता दी गई। उन्होंने कहा, महाराज, सेना का सरदार जो पद्म सिंह है, उसने अपना भेष छिपाया हुआ है। वास्तव में वह पुरुष के वेश में वह नारी है। महाराज ने उन सैनिकों से कहा, वे सिर पैर की बातें मत करो। यदि उस वीर को तुम्हारी इस करतूत का पता चल गया तो बड़ा बखेड़ा हो जाएगा। वो वीर सैनिक है और अपनी टुकड़ी की कमान बहुत ही अच्छी तरह संभाले हुए हैं। इस पर सैनिकों ने दावे से कहा, महाराजन, वह निश्चित रूप से नारी है और किसी कारणवश नारी से पुरुष बना हुआ है। अपने विश्वास के लिए आप हमारी बात की परीक्षा कर ले। महाराजा के चिंतन में मोड़ आ गया। सोचने लगे, हो सकता है वो नारी ही हो। यह सोच उन्होंने सेवकों को भेज करके पद्म सिंह को बुला भेजा। फौजी पोशाक में पद्म सिंह वहाँ उपस्थित हुआ तो महाराजा को उससे कोई प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। फिर भी सैनिकों के दावे का प्रभाव भी उन पर था, अतः उन्होंने पूछा, कमांडर, कुछ लोगों को ऐसी शंका है कि तुम पुरुष के भेष में कोई नारी हो। यह उनकी केवल शंका ही नहीं, दावा भी है। यदि यह बात सच है तो निश्चय ही तुमने किसी मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए वो कदम उठाया होगा। सच सच बताओ, मैं राजा हूं और प्रजा का दुख दूर करना मेरा धर्म है। महाराजा के कथन के बीच में ही कमांडर की आंखों में आंसू बहने लगे थे और वह फूट फूट करके रो रहा था। उनका कथन पूरा हुआ तो बोला, महाराजन, मेरा भाई जोरावर सिंह आपके कारागार में कैद है। मेरे गांव के एक महाजन ने उसे गिरफ्तार कराया है क्योंकि हमारे माँ बाप हमें छोटी ही उम्र में छोड़कर परलोक सिधार गए थे और उस महाजन ने हमें कर्ज दे दिया था। कर्ज उतार नहीं सका तो महाजन ने यह कदम उठा लिया। मैं जोरावर सिंह की बहन हूं और भाई का कर्ज उतारने के लिए पुरुष वेश बनाया है। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपको धोखा दिया है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं और दंड भोगने के लिए प्रस्तुत हूं। महाराज ने तुरंत ही जोरावर सिंह को रिहा कर दिया। फिर उस महाजन को बुलवाकर उसका सारा कर्ज राजकोष से चुकता कर दोनों भाई बहनों को अपने पास रख लिया। जोरावर सिंह को सेना नायक बना करके सुपात्र क्षत्रिय युवक के साथ उसकी बहन पद्मा का विवाह भी करवा दिया। तो इस प्रकार उनकी ये गहराई सी समस्या, जो कि बहुत ज्वलंत समस्या थी, जिस कर्जे के कारण उन दोनों का जीवन तबाह हो गया था। कहने का भावार्थ ये है कि जब अपने जीवन में ऐसी परेशानियां आती हैं तो व्यक्ति के अंदर जब दृढ़ता की शक्ति जागती है तो वह हर कदम उठा करके उस परिस्थिति को पार करने के लिए एक अपने अंदर ऐसी शक्ति और ऊर्जा पैदा कर लेते हैं जो मनुष्य के जीवन में आम तौर पर ऐसी परेशानी के वक्त में होता है। वही असल में बहन पद्मा के जीवन में ऐसी एक परिवर्तन की घड़ी और दृढ़ता की घड़ी आई, जिसके कारण उन्होंने वो अपने जीवन का ऐसा स्टेप शुरू किया जिसके कारण वो सभी के नजरों में सिद्ध भी हो गया कि वो नारी है। पर फिर भी उसने जब सच्ची बात अपनी दिल की बात और अपने में आई हुई दृढ़ता की शक्ति के द्वारा जो उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा बलिदान और ऐसा त्याग और ऐसा सशक्तिकरण का जो नारा अपने जीवन से लिया, उसी का प्रतिफल राजा को भी उनकी बातों का एहसास हुआ और सारी समस्या समाधान हो गई। और यथोचित अपने भाइयों को भी कमांडर की पद प्रतिष्ठा मिली और उनके भी जीवन का एक अच्छा समाधान मिल गया। तो कहने का मतलब यह है कि कथा का सार यही प्रस्तुत करता है कि जीवन में परेशानियां आती हैं, पर उन परेशानियों से डर करके अगर हम भाग जाते हैं तो हमारी जीवन एक कौड़ी तुल्य हो जाती है। अगर उन परिस्थिति को जूझने के लिए अपने में ऐसी ऊर्जा और शक्ति, परिवर्तन की शक्ति और ऐसी दृढ़ता की शक्ति हम जब लाते हैं, तो एक दिन परिस्थिति जैसे किसी पहाड़ में चढ़ने के बाद पर्वत हमारे पांव के नीचे आ जाता है, उसी प्रकार परिस्थिति भी हमारे नीचे आ जाती है, माने प्रकृति दासी हो जाती है, हमें उसका प्रतिफल मिलके ही रहता है। यही है साहस की अनुपम शक्ति जो इसकी कथा सार वस्तु से हमें अवगत कराता है। ओम शांति, ओम शांति।